सर्वत्र स्वरूपं रूपं तस्यापदिवरिपरिमाधुरिं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमनोराधिकामाधवासं प्राप्तो जस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्ये गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दिरकृतेन्दीवरं जातन्यारुडरोचसंविदधतं पट्टम्बरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि रसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेत् दामोदरं तवैवास्मि नजमामि त्वया विना इति विद्याय राधे तं नयनां चरणं कृते भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै चित्ताश्रुतामादितरणं मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्न विन्दे नमस्ते
श्री गुरु गौरांग की कृपा से और गिरिराज जी की हस्त की कृपा से आज हम लोगों का कितना 14वां दिन अमावस्या तो अभी तो ये 15-16 दिन हो गए और बहुत निर्विघ्न रूप से अभी तक संपन्न हुआ। आज विशेषकर गिरिराज गोवर्धन का अन्नकूट है। सवेरे मैया कुछ पकवान बना रही थी और कृष्ण मैया के पास में पहुंचे। मैया आज मेरा जन्मदिवस है या क्या है, इतना पकवान किस लिए बना रहे? मैया ने कहा अभी फुर्सत नहीं है, जाओ जाओ खेलो। उत्तर नहीं दिया ठीक से। उस समय कृष्ण नंद बाबा के यहां गए, गोदी में बैठ गए और बड़े प्रेम से कहा आज मैया सवेरे से पकवान बना रही है, आज मेरी जन्मतिथि या क्या है जो मैया बना रही है? मैंने पूछा तो कोई उत्तर नहीं दिया। बाबा बोले तुम जानते नहीं, आज बहुत बड़ा भारी त्योहार हम लोगों का उत्सव है। आज इंद्र की पूजा होगी, सारे ब्रज से लोग गाड़ियों में भरकर पुए पकवान अन्न इत्यादि सभी कुछ लेकर के इंद्र की पूजा करेंगे। घर घर में आज इनकी पूजा हो। कौतूहल वश कृष्ण ने कहा मैया इंद्र कौन है और इनकी पूजा कैसी? और इंद्र ही तो वर्षा करते हैं और वर्षा से चारों तरफ में घासें होती हैं, कृषि होती है, हमारे गायों का पालन होता है और फिर हमारे घर में दूध दही इत्यादि होती है, हमारा भोजन सब कुछ वर्षा के ऊपर में निर्भर है। यदि वर्षा नहीं हुई तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। इसलिए प्रारंभ काल से ही हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। कृष्ण ने पूछा बाबा जहाँ इंद्र की पूजा नहीं होती वहां वर्षा नहीं होती है संसार भर में, सब जगह तो इंद्र की पूजा नहीं होती, तो वहां कैसे वो वर्षा होती है और कैसे ये सब कुछ होता है, गाय कैसे बचती हैं। तो नंद बाबा उत्तर नहीं दे सके, उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने कहा जहां कृष्ण ने कहा जहां इंद्र की नहीं पूजा होती है वहां भी सर्वत्र वर्षा सम रूप से होती है, जैसे ब्रज में होती है वहां भी होती है, वह गायें भी वहां पर पलती हैं, घासें भी होती हैं, पानी भी चारों तरफ में होता है। तो हमारे समझ से तो गोवर्धन, गायों का वर्धन करने वाले गोवर्धन ही हैं, और इन्हीं के वजह से वर्षा होती है, इन्हीं के वजह से ब्रज में चारों तरफ में वर्षा होने से पानी सुंदर मीठा भरा रहता है, घासें होती हैं, हम घासें चराते हैं गायों को, और ब्रज की समृद्धि होती है, इसलिए गोवर्धन की पूजा करना हमारे समझ से अच्छा है। अब आपकी इच्छा। नंद बाबा ने देखा जी बेटा तो छोटा है, 7 वर्ष का हो गया है, छोटा है किंतु बात तो बूढ़ों जैसे करता है, और इसके तर्क का कोई उत्तर नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा तो ठीक है, आज से हम लोग गोवर्धन की ही पूजा करेंगे। इंद्र ने कभी आपको दर्शन दिया तो नहीं, तो कोई वर दिया नहीं, तो फिर चलिए अभी जो ब्रज भर में जो पकवान बन रहे हैं ये सब सारे पकवान, और जितना ब्रज में दूध है दही है और सब कुछ है उनसे अभिषेक कराया जाएगा, और अभिषेक करा करके उनको अन्न का कुट दिया जाएगा, जो कुछ लाखों करोड़ों ब्रजवासियों के घरों में जो कुछ पकवान आज बन रहा है अनाउंस कर दिया जाए, घोषणा कर दी जाए, सभी छकड़ों पर गाड़ियों पर बैठ लेकर और ब्रजवासी सारे निकल करके आए और वहीं पर गोवर्धन की पूजा होगी, और इस तरह से गोवर्धन प्रसन्न होने से गोवर्धन होगा गायों का, गोपियों का, गोपों का, गोवत्सों का, सबका वर्धन। कृष्ण राय मान करके कृष्ण की राय नंद बाबा ने घोषणा कर दी सारे ब्रज में, और सभी लोग लेकर के चले और गोवर्धन की तराई में उनकी पूजा हो। जहां जो जो ब्रजवासी जहां तहां से सब शक्तों में भरकर अपने बाल बच्चों सबको साथ में लेकर के आज के दिन गोवर्धन का अभिषेक किया और उनकी पूजा की, और पुरोहित कौन बना, वही कृष्ण ही बने पुरोहित, एक तरह से पुरोहित बने और दूसरी तरफ से गिरिराज जी बन गए और उनकी पूजा कराने लगे, जहां पर कि कृष्ण ही स्वयं पूज्य और पूजक दोनों हैं, तो वहां पर पूजा विधिवत ही होगी, पूजा खूब विधिवत हुई, मंत्र इत्यादि का उच्चारण जैसे गोप लोग करते हैं उसी तरह से हुआ, और पूजा हुई चारों तरफ से, अभिषेक हुआ और इसके बाद में भोग लगाए, जो जहां से है जगन्नाथ जी जैसा, जगन्नाथ में कैसे भोग होता है, दृष्टि भोग करते हैं, जो जहां है वहीं से रख दिया और वहीं से ही, हाँ तब एक होता है जो जहां से रहता है नारिकल फेंकता है गोवर्धन, उनको चोट नहीं लगती जगन्नाथ जी, यहाँ नारिकल तो नहीं फेंकते हैं, किंतु जो जहां से है वहीं से भोग दिया, कोटि कोटि लोग एक जगह कहां कैसे कर सकते हैं, भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद में सब लोगों ने प्रसाद पाया और सब लोग लेकर के जब कृष्ण ने भोग लगाया एतत् नैवेद्यम ओम गिर राजाय नमः और लंबी लंबी पूजाएं हजारों पूजाएं उन्होंने बाहर कर दी और गपागप सब कुछ मिनटों में खा गए। और मानसी गंगा और जितना पानी था वो सब खाली कर दिया और आनोरे आनोरे और ले आओ और ले आओ ये कह करके चिल्लाने लगे। कृष्ण जी हम गरीब लोग हैं गोप हैं हमारे पास में जो कुछ था वही सब आपके चरणों में अर्पण कर दिया है अब तो हमारे घरों में कुछ नहीं है और फिर से अब बनाना और लाना ये बहुत मुश्किल की बात है आप उसी से ही संतुष्ट हुई। तब उन्होंने उसी से तृप्तोष्मी कहा जे बर मांगो तो ब्रजवासियों ने क्या बर मांगा कृष्ण ये लाला सुखी रहे इसके ऊपर में बहुत से विघ्न बाधाएं आती हैं इसलिए ये सदा के लिए सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं। और इसके बाद में कृष्ण ने कहा ये देखो हमारे गोवर्धन तो प्रकट होकर के और बर दिया इंद्र ने कभी नहीं दिया इसलिए प्रतिवर्ष ऐसे ही इनकी पूजा होगी। और इसके बाद में वहीं पर बैठ करके प्रसाद पाया सब लोगों ने तो जब सभी खा गए तो फिर प्रसाद रहा कहां सब खाने के बाद में भी जो प्रसाद जो लगाया गया था वो सब भरा का पूरा रह गया फिर उन्होंने रख दिए प्रसाद और सब लोगों ने प्रसाद पाया और कीर्तन करते हुए गान करते हुए जैसे ब्रजवासी करते हैं गोवर्धन की परिक्रमा की बूढ़े लोग और बच्चे लोग छकड़ों में बैठ गए गाड़ियों में बैठ गए और गोप लोग क्या किया बड़े बड़े जो हैं और महिलाएं वो अपना अपना दल बना करके कीर्तन करते हुए गान करते हुए गोवर्धन की परिक्रमा पूरी की। इस तरह से अन्नकूट हुआ किंतु इधर में इंद्र को खबर लगी कहा ये गो नादान एक बच्चे के कहने से आज हमको हमारी अवज्ञा करके गोवर्धन की पूजा की है आज गोवर्धन को भी चकना कर चूर कर दूंगा और सारे ब्रज को अप्लावित कर जल से भर दूंगा कोई भी नाम निशाना ब्रज का नहीं रह जाएगा। ऐसा अगर संवर्तक को मेघ को आदेश दिया और मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई और फिर वज्र इत्यादि सब गिरने लग गया किंतु सात दिन मूसलाधार वर्षा होने पर भी ब्रज कृष्ण ने गोवर्धन को उठा लिया। लोगों ने ब्रजवासियों ने कहा ये इंद्र कुपित होकर के ऐसा कर रहा है इसलिए हमारी रक्षा हो इसलिए सब जितने बाल बच्चे लेकर के कृष्ण से निवेदन किया और कृष्ण ने कानी उंगली पर झट फिर राज गोवर्धन को धारण कर लिया उंगली भी जरूरत ने नख पर ही धारण कर लिया। इसके बाद में सात दिनों तक होता रहा फिर देखा इंद्र ने इनका कुछ नहीं हुआ और उधर चकलेश्वर का चक्र और कृष्ण का चक्र नारायण का चक्र इस गोवर्धन की रक्षा करते रहे और गोवर्धन को इतना आनंद हुआ स्वप्रष्ट हस्ताम भुज सौ कुमार जे सुखानुभूते रति भूमि भूत महेंद्र वज्रा हतिमप्यजानन गोवर्धनों में दिशताम अभिष्ट बड़ा सुख हुआ उनको रोमांच हो गया और जैसे खुजलाहट होती है ऐसे हुआ जब क्योंकि कृष्ण के हाथों पर आज है। इस तरह से सात दिन के बाद में इंद्र का अभिमान दूर हुआ वो गाय को सुरभि गाय को लेकर के वहां पर उपस्थित हुए और स्वर्ग गंगा से पानी ला करके ऐरावत इत्यादि के हाथों से गोविंद कुंड में उनका अभिषेक किया इस प्रकार से अन्नकूट हुआ। तो आज ये गिरिराज गोवर्धन का अन्नकूट हम मनाने जा रहे हैं, ऐसा ही करेंगे। हरिभक्ति में ऐसा नियम है, आज सबसे पहले हरि गुरु वैष्णव की पूजा होगी, गुरु की पूजा, वैष्णव की पूजा, ब्रजवासियों की पूजा, ब्राह्मणों की, गो पूजा, गो क्रीड़ा, गो की क्रीड़ा, उनको गायों को क्रीड़ा कराया जाता है, अर्थात तरह तरह से उत्सव बनते हैं और उसमें गायें बड़े आनंद से इधर उधर खेलती हैं। हमारे यहाँ तो देखा है एक शुकर के बच्चे को बांध देते हैं और उसको घसीटते हैं तो चेचा करता है और गायें उस पर अपने सिंहों से आक्रमण करती हैं। लाखों लोगों का मेला लगता है, लाखों गायें आती हैं और गोवर्धन जी का गोबर का मूर्ति बनती है और वहीं पर वो गोवर्धन की पूजा होती है। यहाँ ब्रज में भी गोवर्धन साक्षात तब गोबर से ही बना करके पूजा करेंगे, वृंदावन में भी ऐसे ही, सब जगह ऐसे ही, ऐसा नियम है। तो आज गोवर्धन की पूजा है, आज हम लोग भी गो पूजा करेंगे। इसके बाद में गाय हमारी है आएगी और उसका हम लोग पूजन करेंगे, पुजारी सब अर्चन का पात्र ले चलेंगे, गो पूजन कर करके ब्रजवासी का पूजन करेंगे और फिर तैयार होकर के चलेंगे अन्नकूट उत्सव। पहले अभिषेक होगा और इसके बाद में अन्नकूट का भोग उनको लगाया जाएगा और फिर उनको भोग दे करके हम लोग यहाँ आएंगे और सब लोगों को पूछेंगे। Can you tell? You all? No?
Half the time it is not coming.
Can you? Oh, you.
Thank you.
सिद्ध है माधवेंद्रपुरी जी का गोपाल विग्रह वो कहीं कुछ दिनों के बाद में उनकी पूजा होती थी वो इसी कारण से मुसलमान और जैनों के आक्रमण के भय से पुजारियों ने उनको छिपा दिया और हजारों वर्ष हो गए पूजा नहीं रही और वहीं पर वो छिपे रहे। माधवेंद्र पुरीपाद जब ब्रज में आए तो उनको स्वप्न हुआ, मैं पास ही में एक झाड़ी में मैं संक्षेप में बता रहा, बहुत समय लगे, मैं झाड़ी में छिपा हुआ हूं, आप मुझे प्रकट कीजिए। और बहुत दिनों से खाया नहीं, बड़ी भूख लगी है और बहुत दिनों से स्नान भी नहीं किया है, इसलिए हमारा शरीर बहुत गर्म हो गया है, जल्दी करो गांव वालों को लेकर के। और वो निशाना बतला दिया और निशाना के अनुसार में जहाँ अन्य ग्राम है उसी जगह पहाड़ गिरिराज गोवर्धन की तलाटी में ही पास ही में बांस के बगीचे और सब थे, सर्प इत्यादि वहां पर रहते थे, तो सबको इधर उधर कर करके और थोड़ा सा खोदा गया तो उसमें श्रीनाथ जी निकले और उनको ऊपर में ले जा करके वहीं पर अब मंदिर सुना पड़ा है उसी में उनकी वहां पर ले गए और वहां पर पत्थरों से मंदिर बनाया। मंदिर मैंने एक पत्थर ऐसे खड़ा कर दिया, एक सामने और एक पीछे, और उसमें श्रीनाथ जी को पधरा दिया और वहां पर उनको भूख लगी है। पहले तो अभी से सारे शरीर में गर्मी है इसलिए अभिषेक कराया, बहुत दिनों तक अभिषेक होता रहा। इसके बाद में भोग अन्नकूट एक दिन नहीं, कब तक चलता रहा, बहुत दिनों तक चलता रहा। मथुरा के बड़े बड़े धनी मानी सेठ अन्नकूट की व्यवस्था करते थे, घी और सब चीजें, बूरा आटा मैदा चावल, और ब्राह्मण कितने पकवान बनाते थे, रोटी बनाते थे, अन्न बनाते थे और गिरिराज जी को नित्य में भोग। कुछ दिनों के बाद में ठाकुर जी ने कहा और मुझे तृप्ति तो हो गई खाने से किंतु शरीर की गर्मी पूरी नहीं गई, हमको मलयालम चंदन ले आओ, जगन्नाथपुरी में मिलेगा, माने ये मैसूर में मिलता है, वहां से जगन्नाथ जी को वहां जाता और वहां से और कर्पूर ये ले आओ और उसको घिस करके हमारे हमको ये लगाओ। तो वो प्रसन्न होकर के अपने कोई शिष्य को वहां रख दिया श्रीनाथ जी के लिए पूजा के लिए और खुद चले गए। चलते चलते आप लोग जानते हैं फिर चोरा गोपीनाथ में पहुंचे और वहां भोग क्या लगता है ये भी देखा। कृष्ण ने एक टुकड़ रख दिया खीर, वहां का खीर वैसा ही अमृत केली रख दिया और सवेरे देखा जी रात में, अरे हमारा कोई भक्त आया है उसकी लालसा है देखने की, तो इसलिए एक कुंडी लेकर के उसके पास में पहुंचा दो, बाजार में सोया है और हम जा करके देखो हमने चुरा करके रख दिया। नगा जी हमने तो सब साफ कर दिया था, वहां कुछ भी नहीं रखा। देखा जी उनके कपड़ों में ढका हुआ, भक्त के लिए ऐसा करते हैं। और फिर उनको दिया, उन्होंने लिया और देखे जैसे प्रसाद पाया अद्भुत मधुर, ऐसे ही अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। और इसी बीच में देखा जैसे ये तो बड़ी प्रतिष्ठा होगी, ये पुजारी कह देगा और सब लोग हजारों आदमी हमारे दर्शनों के लिए आएंगे, ये ठाकुर जी के लिए भोग रखते हैं वो कैसा बड़ा साधु होगा। बस रात ही रात में निकल गए और जगन्नाथपुरी गए, वहां से चंदन लिया और कर्पूर लिया और दो एक ब्राह्मण सेवक लिए जो उनको लेकर के इतना चल सकता है। और फिर लौटे जब वहां, फिर चोरा गोपीनाथ में ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, मैं गोपीनाथ के रूप में यहाँ हूँ, गोपीनाथ का चंदन घिस करके और कर्पूर घिस करके लगाने से हमारा शरीर शीतल और ठंडा हो जाएगा। इस तरह से वहीं पर रह करके और वो करते रहे। फिर वहां से लौट करके आए कि नहीं, सुनते हैं कि वहीं पर उनकी समाधि है, उम्र भी हो गई थी। और इसके बाद में आजकल वल्लभाचार्य वाले उनकी सेवा करते हैं, हमारे रूप गोस्वामी इत्यादि ने वो विग्रह दे दिया, हम लोग विग्रह पूजा नहीं करते हैं, भाव सेवा करते हैं, इसलिए कौन एक जगह रह करके पूजा करे, इसलिए वात्सल्य रूप में वो पूजा करते हैं, इसलिए उनको दे दिया। तो वो आजकल माधवेंद्रपुरी नहीं कहते, जति कहेंगे, किंतु माधवेंद्रपुरी गौड़ियों वैष्णव के आराध्य उनका नाम ही नहीं, ऐसी बहुत सी चीज है। तो इस तरह से अन्नकूट उन्होंने किया, वो कहाँ किया, अन्न और गांव के उस पार जतिपुरा में किया, वहीं रहते थे। और कितने दिन तक उत्सव हुआ था, तो आज उसका भी हम लोगों ने स्मरण किया। चलो
right now, he's in the middle of the night resting in country, he goes up to one of his stores, that indeed the deity had stolen one pot of kheer. So then the pujari took that kheer and went to the marketplace. And he was calling, who is my brother for you, who is my brother for you? You are so fortunate. The deity has stolen this kheer for you. So then Maharaja Puri, in great bliss, he received the kheer. But he had a fear that when the morning time comes, the pujari will tell everyone. And everyone will crowd around him thinking, oh, what a great sadhu. So he didn't want to receive this pratishtha. So at once, in the middle of the night, he left that place. And he carried on his journey. So he went to Jagannath Puri and he collected some sadhu paste. And the king gave him a servant also to assist him in carrying so much heavy sadhu paste and camphor. And he was returning to Granada. On his way, again he came to Ramona. And when he arrived there, then Gopinath appeared to him in a dream. He said, oh, I am Gopal. I told him, I am the same person. So you should give the sadhu the place to me, and I will be completely satisfied. So nowadays, the deity of Gopal is in Nathpur, and he's being worshipped by the devotees in the Sampradaya Balabhacharya, and they are worshipping him in Rasala Rasa. So today, we remember this Anupam Mahotsav, which was conducted by Sri Madhavendra Puri in now that place where it was performed, is called the Yagipur, after Sri Madhavendra Puri. And he's on the side of Govardhan, direct opposite from the side of Anio, where the Rishvasis perform their Anupam Mahotsav.
अब ये आज तो कहीं बाहर जाना नहीं है, इसलिए एक श्लोक भजन रस से हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। पंचम जाम आसक्ति अनाराध्य राधा पदाम्भोजरेणी अनाशित बिंदाटवी तत्पदांकम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुता श्याम सिंदूर सस्यावगा। जिन लोगों ने राधा जी के चरण कमलों की रेणु की आराधना नहीं की है और राधा जी के श्री चरणों से पदांकित विहार स्थली ब्रज का वृंदावन का आश्रय नहीं लिया है, जिन्होंने उनके गंभीर भाव में निमग्न चित्त वाले रसिक भक्तों की सेवा नहीं की है, वे श्याम रस सिंधु में कैसे अवगाहन कर सकते हैं, अर्थात कभी नहीं कर सकते। राधा पदाम्भोजरेणु नहि आराधिले तहार पदांक पूत ब्रजना भजिले नाश्य विले राधिका गंभीर भाव भक्त श्याम सिंधु रस किसे हवे अनुरोध। भजन रहस्य, इस स्तोत्र को स्मरण करके यह स्वसंकल्प प्रकाश स्तोत्र रघुनाथ दास गोस्वामी का शायद है या रूपकोशन रघुनाथ दास गोस्वामी। तो इस सत्र को स्मरण करके भक्त विनोद ठाकुर राधा माधव की विचित्र सेवा की प्राप्ति के लिए उत्कंठित हो रहे हैं और कह रहे हैं श्याम रस सिंधु में अवगाहन करने के लिए। श्याम रस क्या है? श्रृंगार रस, यह दूसरा उसका श्रृंगार रस, गोपी भाव। जो श्रृंगार रस में राधा और कृष्ण जुगल की सेवा करने के लिए उत्कंठित हैं, उन लोगों के लिए लादनी शक्ति स्वरूपिणी महाभाव स्वरूपिणी राधा जी की चरण रेणु की सेवा करने पड़े और उनके केली विलास स्थल वृंदावन धाम में और उनके प्रिय भक्तों की आराधना यह अत्यंत आवश्यक है। तीन चीजें, क्या चीज? राधा जी की चरण सेवा में अभिषिक्त होना, जहां वृंदावन धाम है, जहां उनकी चरण की धूली पड़ी है उसमें अभिषिक्त होना, और तीसरा है उन राधा जी के जो रसिक भावुक जो भक्त हैं उनकी आराधना सेवा। इसके अतिरिक्त किसी भी उपाय से राधा माधव की सेवा प्राप्त नहीं हो सकती। यदि चाहते हैं तो वो दुराशा मात्र है, जो राधा दास्य पर छोड़ करके कृष्ण संग की प्राप्ति की चेष्टा करते हैं राधा जी के अतिरिक्त अकेले कृष्ण की। बहुत से ऐसे संप्रदाय हैं जो अकेले कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, उनके मंदिरों में राधा जी की मूर्ति नहीं होगी, तो वे कैसे हैं? पूर्णिमा तिथि के दिन ही पूर्णिमा को दर्शन कर लेंगे, ऐसी ये दुराशा। पूर्णिमा के दिन ही पूर्ण चंद्र उदित होता है, उसी दिन दर्शन संभव है, किंतु पूर्णिमा तिथि नहीं है, अमावस्या है या दूसरी तिथि है, उसमें पूर्ण चंद्र को कैसे दर्शन कर सकते हैं? इसलिए राधा जी की कृपा के बिना, उनकी सेवा के बिना, उनके रसिक भक्तों की कृपा के बिना वो चीज नहीं मिलती है। श्याम रस सिंधु में अवगान नहीं होगा। ज एकम गोविंदम भजति कपटी दाम्भिकतया तदम्यारणे क्षीणे क्षणमपि न जामि व्रतमिदम्। इस तावली में स्वनियम दशक में उन्होंने कहा, जो राधा जी को छोड़कर के कपटी दाम्भिक गोविंद का भजन करता है, तदम्य अरणे शीर्णे क्षणमपि न जाति व्रतम। क्या इसका मतलब? तो वो कभी ये असंभव, कभी भी संभव पर नहीं। राधा दास्यम अपाश्य ज प्रयतेत गोविंद संग आशया स्वयं पूर्ण सुधा रुचे परिचयम राकं बिना कांक्षति किंच श्याम रति प्रवाह लहरी बीजम ने तांग विदो ते प्राप्यापि महामृतांबुदि बिंदु परम प्राप्य। इसका अर्थ पहले ही बतला गया है। राधा जी का दास्य छोड़ करके गोविंद की संग की आशा करते हैं, वो पूर्णिमा को छोड़ करके ही पूर्ण चंद्र को देखना चाहते हैं, इसलिए राधा जी की कृपा, उनके भक्तों की कृपा, उनके धाम की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। यदि साक्षात श्याम साक्षात रसराजमय मूर्ति हैं, वो रसराज मूर्ति हैं, तो राधिका जी मदनाख्य महाभागवती हैं। श्रीमती जी का श्रृंगार रस के द्वारा कंदर्प मधु का पान श्याम को कराती हैं। राधा जी ये पान कराती हैं श्याम रस किसको? कृष्ण को, श्याम को ही कराती हैं। कृष्ण के कराए श्याम रस मधुपान निरंतर पूर्ण करे कृष्ण सर्वदा। कृष्ण की समस्त कामनाओं को पूर्ण राधिका ही कर सकती है और कोई नहीं। वो निरंतर कृष्ण को ही श्याम रस पान करा, श्याम रस माने के उनके भीतर में जो अनुराग है, श्रृंगार रस है, मदनक भाव इत्यादि तक, उस श्याम रस से कृष्ण की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। श्याम रस को श्याम रस कहा जाता है, यह विष्णु दैवत मत है। श्याम वर्ण अयम विष्णु दैवत साहित्य दर्प। राधिका उज्ज्वल रसेर आचार्य, राधिका जी उन्नत उज्ज्वल पारकीय भाव के रस के आचार्य हैं। राधा माधव शुद्ध प्रेम विचार्य, जे धरिल राधा पद परम जतने से पाइल कृष्ण पद अमूल्य रतन। जिन्होंने राधिका जी के चरण को ही आश्रय कर लिया, क्या है मैं रघुनाथ दास स्वामी कहते हैं, न दिमामि त्वया बिना इस विज्ञान राधे तम नय माम चरण तवई वासमी, तवई वासमी और फिर तवई वास्मी न जीवामी त्वया बिना। राधिका जी को अंगुली निर्देश करके कह रहे न जीवामी त्वया बिना इति विज्ञाए हे राधे आप हमारे ऊपर में। राधा माधव की विभिन्न लीला विलासों के स्थली ये वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम माने ये समझे जो गोवर्धन इत्यादि नंदगाम सब यह वृंदावन के अंतर्गत है। जुगल किशोर यहाँ पर विहार करते हैं, विचरण करते हैं तथा अपने चरण चिन्ह से वृंदा भूमि को अंकित करते हैं सर्वत्र। ऐसा कोई ब्रज में धाम नहीं है, गोवर्धन में धाम नहीं है जहां पर की राधा कृष्ण के चरण धूलि नहीं पड़ी, चरण नहीं पड़े। राधा पदांकित धाम वृंदावन जारना, राधा जी के पदांकित पद से अंकित वृंदावन का ही नाम है। अन्याराधितो नूनम भगवान हरिश जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो जाम अन्यत। अवश्य ये महिला जिनके ये चरण चिन्ह है अवश्य ही राधिका की कृष्ण की आराधना की होगी, इसलिए इस पर प्रसन्न होकर के श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया और इसको लेकर के तिरोहित हो गए, अपने साथ में ले गए। रासलीला से जब कृष्ण राधा जी को लेकर के अंतरहित हो गए तब कृष्ण का अन्वेषण करते हुए खोजते हुई गोपियां बन बन में घूमने लगी। उस समय कृष्ण के चरण चिन्हों को देखा और फिर उन दोनों के चरण कृष्ण के चरण चिन्हों के बीच में राधा जी के बड़ी सुंदर वो चरण चिन्हों को देखा। उस समय उसके भाग्य की प्रार्थना प्रशंसा करते कश्या पदानी चैतानी जात्या नंद सुनना, ओ ये किसके चरणों का चिन्ह है जिसको एकांत में कृष्ण अपने साथ में ले जा रहे हैं। और जहां नहीं देखा तो ललिता विशाखा जो इनकी है बड़ी प्रसन्न हुई जो कृष्ण उसको अपने वस्त्रक्षल में धारण करके ले गए। राधा कृष्ण केली विलास स्थलों और पद चिन्हों से अंकित, इसका जिसने आश्रय नहीं लिया वो श्रृंगार समझ नहीं सकता। जागृति साधक को ही वृंदावन की कुंज लताओं में राधा कृष्ण की स्तुति है। जात रति रति जिनको उत्पन्न हुई है उनको ये सब लीलाओं की स्फूर्ति होगी। तात्पर्य यह है वृंदावन धाम का आश्रय ग्रहण करने पर विभिन्न लीलाओं का स्मरण होता है और उसमें आवेश हो जाता है। ऐसी अनुभूति स्वजाति ब्रज रस रसी स्निग्धम महत्जनों के संग और उनकी कृपा से ही होगी, इसलिए ठाकुर नरोत्तम जी कहते हैं तार भक्त संगे सदा रस लीला प्रेम कथा जे करे से पाए धन श्याम। श्री राधा श्याम सुंदर के लीला रस माधुर्य का आस्वादन कर अपुरंत अनंत माधुर्य के कल्लोल सिंधु में अवगाहन करने वाले रसिक महत्वगणों के संग के द्वारा ही ऐसा प्राप्त होगा। इसलिए महत्वगणों का रसिकों का संग और वृंदावन धाम भांडीर वन गोवर्धन सबसे अधिक श्रेष्ठ राधा कुंड श्याम कुंड ये सब स्थान है, वर्णनीय स्थान है। यहाँ पर इन लीलाओं को स्मरण करने से जो जाति रति साधक है उनकी स्फूर्ति होगी। पूजा सब समान जल जाए चंदन माला और हल्दी तैयारी कर
If he has never worshipped the dust of Radha's lotus feet, if he has never taken shelter of a pastime place in Vrindavan, which is marked with the impressions of a lotus feet, and if he has never served the devotees whose hearts are submerged in a profound sentiment, it will never be possible. In the contrary, Gurudev explained, while remembering his prayer, Srila Bhaktivinoda Thakur yearns to attain the wonderful and astonishing service of Sri Radha Madha. In order to be submerged in the ocean of Shamaras, that is Srimarasa, it is absolutely essential to worship the dust of the lotus feet of Srimati Radhika, who is the personification of Nadi and Shakti. To worship Vrindavan Dham, a place of amorous pastimes, and to worship a demon most devoted. Except for this method, there is no other way to attain the service of Sri Radha Madha. If one will think that there is another way, then his hope is in vain. This is confirmed in Radhavasa Sutta Nidhi. Those who endeavor to attain the association of Krishna but reject the service of Radhika are like people who try to see the full moon but it is not the full moon night. Ekstavavan is stated in Sonya Manasaka, Jai Kam Govindam Kanishikam Chikam Vikitaya. I will never go near that hypocritical person who worships Govinda alone without Srimati Radhika. This is my vow. So, if Shyam Krishna is directly the emperor of all transcendental mellows and the embodiment of Srimarasa, then Radhika is the embodiment of Madanaki Mahabhav. Srimati Radhika is the cause of Krishna tasting the mellows of Srimarasa. In Chaitanya Chaitanya it stated, Krishna gave Pranaya Shamarasa Bhagavan. Srimati Radhika makes Krishna drink the honey of Shamarasa, the amorous mellow. She engages in completely fulfilling all of Krishna's desires. Srimarasa is also called Shamarasa. This is the opinion of Sri Vishnu Devata, as it is recorded in Sahityadaka, Shamabhano Yadvishnu Devata. Srila Bhaktivinoda Thakur has sung Radhika Ujjvala Rasa Acharya. Srimati Radhika is the Acharya of Ujjvala Rasa. And the pure love between Radha and Krishna is meant to be discussed and contemplated. Those who keep Radhika's lotus feet in their hearts and worship them with great care obtain the priceless jewel of Sri Krishna's lotus feet. Without taking shelter of Radhika, one can never meet with Krishna. The Vedas declare that Krishna is the property of the maid servants of Sri Radha. Vrindavan is the place where Radharani's various pastimes take place. The divine couple roam here performing their pastimes, and the land of Vrindavan is marked with the impressions of their lotus feet. As Srila Bhaktivinoda Thakur's son, Radha Parankirta Dham Vrindavan Jayanam, when Srimad Bhagavatam is stated, Anaradhikarana Bhagavan Hageshwara. At the time of Rasa Lila, when the gopis were searching for Krishna, they discovered his footprints along with the footprints of another gopi. At that time, they said, oh, this gopi has definitely worshipped Krishna in the most excellent way. Therefore, being pleased with her, Shama Sunda has abandoned all of us and taken her away to his lovely place. When Krishna disappeared from Rasa's valley, taking Radhika with him, the gopis were searching for him and saw his footprints in the forest along with Radhika's. They praised their good fortune. Kasyapadani, Chaitani, Kantayapadani, here are the footprints of the gopi who was walking with the son of Nanda Maharaj. All of Vrindavan, including Govinda and Radhika, transcendental places. This is the meaning of taking shelter of Vrindavan Dharam. One should remember the various pastimes performed there and be absorbed in the moods of those pastimes. But such realization can only be obtained by association and mercy of great personalities who have realized those pastimes, who are like-minded and affectionate towards oneself, and who are absorbed in Vajrasa. In Premakti Chandrika, Srinivasa Thakur said, Karmakta Swami Sadavasalila Premakta, Yekwari Sivai Ganesham. Once you associate with the devotees of Srinivasa Radhika, who always discuss the Rasalila, and by this one will surely obtain Ganesham Sri Krishna. The sweetness of the rasa of the pastimes of Radhishyam Sundar can only be realized through association with and service to the great personalities who are relishing that rasa and who are submerged in the waves of this endless eternal ocean of sweetness.
One kirtan.
Radhika.
What?
Hare Krishna. Initiation after Gopuja, they come to the Bhajan city quarter past 8. We start initiation 8:30. After that, 10 o'clock, we go to Vidai Govardhan for the Madhisaka Vrinda and the Akali Gopuja Anandapur Mahotsav. And whoever wants to participate in Anandapur Mahotsav and want to meet some contribution to Gurudev, this is the last chance they can come and come to Gurudev. And so many devotees have